Mari. जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जनावल्लभा गिरिवर धारी, जय गोपी जनावल्लभा गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जनावल्लभा गिरिवर धारी, केशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमोनतीरवनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे Rama 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 Hare Hare, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Nitai Gauraribha, Ribha, Haribol, Haribol. Jaya Jaya Prabhupada 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 Śrīla Prabhupāda ki jai Om Namo Bhagavate Vasudevāya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudiret Nasha Prayesha Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishchiki Srimad Bhagavatam Skand 9 Adhyay 9 Shlok Sankhya 29 Eshah Hi Brahmanah Vidvan Tapah Shila गुणान्वितः आरिराराद्यिषु ब्रह्मा महापुरुषः रञ्जितं सर्वभूतं आत्मभावेन भूतेषु Antarhitam Gunaihi Keshai Brahmano Vidvans Keshai Brahmano Vidvams तपः शीलगुणान्वितः तपः शीलगुणान्वितः आरिरादिशुर्ब्रह्मा महापुरुषः संहितम् सर्वभूतात्मभावेन भूतेष्वन्तर्हितं गुणैः एष हि ब्राह्मणो विद्वन् आरिरादिषु ब्रह्मा महापुरुषसंहितम् सर्वभूतात्मभावेन भूतेष्वन्तर्हितं ब्रह्म एत हि ब्राह्मणो विद्वंस् तपःशीलगुणान्वितः आरिरादिषु ब्रह्मन् महापुरुषसंहितम् सर्वभूतात्मभावेन भूतेष्वन्तर्हितं गुणे एषै ब्राह्मणो विद्वन् तपःशीलगुणान्वितः आरिरादिषु ब्रह्मन् महापुरुषसंहितम् सर्वभूतात्मभावेन भूतेष्वन्तर्हितं गुणे एषै ब्राह्मणो विद्वन् गुणान्वितम् आरिरादिषु ब्रह्मन् महापुरुषसंहितम् सर्वभूतात्मभावेन भूतेष्वन्तर्हितं गुणैः एषै ब्राह्मणो विद्वन् तपःशीलगुणान्वितः आरिरादिषु ब्रह्मन् महापुरुषसंहितम् सर्वभूतात्मभावेन तेष्वन्तर्हितं गुणे एषै ब्रह्मणो विद्वन् तपःशीलगुणान्वितः आरिरादिषु ब्रह्मन् महापुरुषसंहितम् सर्वभूतात्मभावेन भूतेष्वन्तर्हितं गुणैः एषै ब्राह्मणो विद्वन् तपशील गुणान्वितः आरिरादेशो ब्रह्मन् आपुरुष संहितम् सर्वभूतात्मभावेन कुतेष्वन्तर्हितं गुणे एष हि ब्राह्मणो विद्वन् तपःशीलगुणान्विता हरिराजेषु ब्रह्मन् महापुरुषसंहितम् सर्वभूतात्मभावेन भूतेष्वन्तर्हितं गुणैः एषः यः हि निःसन्देह ब्राह्मणः योग्य ब्राह्मणः विद्वान् वैदिक ज्ञान में पारंगत तपः तपस्या शीला सदाचार गुणान्वितः सारे सद्गुणों से युक्त आरिरादिषु पूजा में लगने की इच्छा करता हुआ ब्रह्मा परब्रह्म महापुरुष महापुरुष कृष्ण संगीतहम के नाम से विख्यात सर्वभूत सारे जीवों का आत्मभावेन परमात्मा रूप भूतेषु हर जीव में अंतरहितम हृदय के भीतर गुणे ही गुणों के द्वारा अनुवाद और तात्पर्य जिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यह ब्राह्मण विद्वान अत्यंत योग्य तपस्या में रत तथा समस्त जीवों के हृदय में वास करने वाले परमात्मा परब्रह्म की पूजा करने के लिए परम उत्सुक है। तात्पर्य, ब्राह्मण की पत्नी अपनी पति को ऐसे दिखावटी ब्राह्मण नहीं मानती थी जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण कहलाता है। प्रत्युत यह ब्राह्मण लक्षणों से युक्त होने से सचमुच योग्य था। यस्य लक्षणम प्रोक्तम भागवत में कहा गया है, ब्राह्मण के लक्षण का उल्लेखन शास्त्र में हुआ है। समोदवत्तवस्सौचम शांतिरार्जमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति आत्मसंयम तपस्या शुद्धि सहिष्णुता निष्कपटता ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता ये गुण हैं जिसके द्वारा ब्राह्मण कर्म करता है। ब्राह्मण को न केवल सुयोग्य होना चाहिए अपितु उसे वास्तविकता ब्राह्मण कर्म करने चाहिए। योग्यता ही पर्याप्त नहीं होगी, मनुष्य को ब्राह्मण के कर्तव्य भी करने चाहिए। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह पर ब्रह्म कृष्ण को जाने, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान। चूंकि यह ब्राह्मण योग्य था और ब्रह्म कर्म में लगा था, अतएव इसका वध करना अत्यंत पापपूर्ण कृत्य होगा। ब्राह्मण की पत्नी ने अनुनय विनय की थी उसके पति का वध ना किया जाए। ओम ज्ञात विरांदस्य ज्ञानांजन शलाक चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वापकांतिकं वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणलिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते पिकाकान्तराधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौरङ्गिराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्रीमद् भागवतम का यह नवा स्कंद में हमको बहुत विचित्र विचित्र लीलाओं को श्रवण करने का मौका मिलता है। कहीं कहीं से प्रकट हो गया कोई नरभक्षी हो गया, किसी ने उसको धोखा दे दिया, नर मांस मिला के उसको खिला दिया, उसको शाप मिला इसने उसको शाप दिया, और कुछ समय के लिए पुरुष रहेगा कुछ समय के लिए स्त्री रहेगा, और किसी को घर से बाहर निकाल दिया तो वापस आया तो सारा संपत्ति हड़प लिया और पिताजी को संपत्ति के रूप में दे दिया। अनेकों अनेकों राजाओं का इस प्रकार की चरित्र सुनने के द्वारा हमको ऐसा लगता है कि ये भागवतम है क्या, ये भागवतम है कि कुछ और है कुछ नॉवेल है या कोई और पुराण है। तो इसके विषय में पहले स्कंद में हमको एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है नारद व्यास संवाद का। नारद व्यास संवाद में मुख्यतः नारद जी व्यास जी के पास क्यों आए थे, क्योंकि वह असंतुष्ट थे। सारे जितने पुराण इतिहास और वेद वेदांत का रचना करने के बाद भी व्यास जी असंतुष्ट थे। तब नारद जी जब आए तब व्यास देव ने उनको अच्छी तरह से पूजा किया। तब नारद जी को उन्होंने कहा कि मैं बड़े असंतुष्ट हूँ, तो उसका कारण बताइए। तो नारद जी ने कहा कि आप ही जानते हो असंतुष्टि का कारण। नहीं, व्यास देव ने कहा नहीं नहीं, आप भगवान वेद समस्त गुह्यम, आप सारे वेदों का हर व्यक्ति के हृदय में क्या हो रहा है जब जानते हो, मैं आपका शिष्य हूँ इसलिए मेरे हृदय में क्या कमी है वो आप ही जानते हो, बताइए। तब नारद जी ने कहा व्यासदेव को, क्या कोई व्यक्ति अपनी शरीर और आत्मा को मैं मान के हुए कभी संतुष्ट हो सकता है, कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। अपना शरीर को मैं मानना या अपने शरीर के स्तर में संतुष्ट होने का प्रयास करना या मन को मैं करके मान के चलना, मन को संतुष्ट करने के प्रयास करना, इसके द्वारा कोई संतुष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए नारद जी ने व्यासदेव को कहा, हे व्यासदेव, आपने भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया और भक्ति का स्थापना नहीं किया। तब व्यासदेव ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो पुराणों में बहुत सारे भगवान की लीलाओं का वर्णन तो किया हूँ। तब नारद जी ने कहा, भगवान की लीलाओं को वर्णन तो किया पुराणों में, लेकिन प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक प्रसंग में केवल कृष्ण का लीलाओं को वर्णन नहीं किया। कृष्ण का लीलाओं को अन्य लीलाओं के साथ, अन्य देवताओं की लीलाओं के साथ आपने एक साथ रख दिया। इस तरीके से अन्य पुराणों में आपने कृष्ण कथा के प्रति अपराध किया, क्योंकि कृष्ण कथा को अन्य कथाओं के साथ समतुल्य बना दिया। तो इसलिए ऐसा ग्रंथ रचना करो जिसके अंदर केवल कृष्ण लीलाओं की रचना हो। दूसरा बात क्या है, ऐसा एक ग्रंथ का रचना होना चाहिए जिसके अंदर प्रत्येक श्लोक में शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हो, प्रत्येक प्रसंग में शुद्ध भक्ति का वर्णन हो, प्रत्येक अक्षर में शुद्ध भक्ति का वर्णन होना चाहिए। तब व्यास जी ने कहा, नहीं मैं तो शुद्ध भक्ति का वर्णन तो किया हूं अन्य पुराणों में। नारद जी ने कहा, नहीं आप अन्य पुराणों में शुद्ध भक्ति का वर्णन किए हो, किस रूप में किए हैं, आप भक्ति को मुक्ति का साधन के रूप में वर्णन किया है, यानी मुक्ति के द्वारा भक्ति प्राप्त हो, भक्ति के द्वारा मुक्ति प्राप्त होता है, लेकिन ये भक्ति के प्रति महान अपराध किया है। तो बाद में एक श्लोक उच्चारण करते हैं कृष्ण कथा का महिमा के वर्णन में, न यद्वचस्तत् चित्रपदम हरेर यशो वायसम तीर्थमुशंति मानता न यत्र हंसा निरमंचु शिक्षया। उन्होंने कहा व्यासदेव को नारद जी ने कि न यत् वचश्चित्रपदम हरेर यशो, जो शब्द भगवान की जो गुणगान है उसके द्वारा सुशोभित नहीं रहता है, वैसे जो वचन है वो क्या है, वायसम तीर्थम उशंति मानसा। वायसम तीर्थम का अर्थ है कौओं का तीर्थ स्थान। कौओं का तीर्थ स्थान का अर्थ क्या है, कौवे कहाँ आते हैं, सब लोग सारे कौवे कहाँ जुड़ जाते हैं, जहां कचरा रखा हो उधर सब आके काव काव करने लग जाते हैं। यानी दूसरे शब्दों में जो साहित्य या जो शब्द या जो श्लोक जो रचना कृष्ण कथा के संबंधित नहीं है वो कचरे के बराबर है, और उस कचरे को वो खा के आनंद लेने वाले कौन है, वो कौवे है। तब ये श्लोक के द्वारा ऐसा कभी कभी हो सकता है कि ये जो खास करके नौवां स्कंद में कुछ ऐसे ऐसे श्लोक है जहां किसी ने किसी को श्राप दिया और कोई भगवान के साथ उसका कुछ संबंध ही नहीं है, कृष्ण कथा का कुछ संबंध ही नहीं है, हो सकता है ऐसे श्लोकों को सोच के भागवतम भी क्या वायसम तीर्थम है क्या, ऐसा प्रश्न प्रसंग उत्पन्न हो सकता है। उसके जवाब में आचार्यगण भागवतम के 12वां स्कंद का एक श्लोक को कोट करते हैं, कलिमल समति काले न कालनो किलेशो हरे रितरत न गीयते ही अभिक्षणम यह तो पुनर्भगवान अशेष मूर्ति ही परिपतितोनुपदम कथा प्रसंगा। ये श्लोक में कहा गया है जो भगवान की जो कथा है, हर व्यक्ति के हृदय में जो कलयुग का जो वास है, कलयुग की वजह से जो कलयुग की वजह से जो पाप होते हैं उसको नाश करने की क्षमता है, लेकिन अन्य पुराणों में इस ये शक्ति नहीं है, लोगों के हृदय में कली का नाश करने की शक्ति नहीं है। क्यों, क्योंकि कलिमला समति काले न अखिलेशो हरे इतरतः न गीयते ही अभिक्षणम, न गीयते अभिक्षणम। अन्य पुराणों में अभिक्षण मतलब हर जगह हर समय भगवान हरि का गुणगान नहीं हुआ है, लेकिन इहतु का अर्थ क्या है, इस भागवतम में इहतु पुनर् भगवान अशेष मूर्ति ही, जो भगवान अशेष मूर्ति है क्या हुआ है, परि पतितोनुपदम अनुपदम कथा प्रसंगई ही। तो ये श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण एक शब्द है, अनुपदम कथा प्रसंगई ही, भगवान की गुणगान कैसे हुआ है, अनुपदम हुआ है। अनुपदम का अर्थ क्या है, प्रत्येक अक्षर में हुआ है, प्रत्येक शब्द में हुआ है, प्रत्येक श्लोक में हुआ है, लेकिन किस हिसाब से हुआ है, अनुपदम कथा प्रसंगे ही, कथा प्रसंगे ही। कथा प्रसंग का अर्थ क्या है, कथा प्रसंग के सार के रूप में हुआ है, कथा प्रसंग के सार के रूप में हुआ है, इसका अर्थ क्या है? जैसे एक कुछ श्लोकों के पहले एक श्लोक आता है जहां एक राजा के जो चार पुत्र थे, एक पुत्र को उन्होंने जंगल भेज दिया, वापस जब आया बाकी पुत्रों ने क्या किया, राजा का सारा संपत्ति हड़प लिया और ये पुत्र को राजा को संपत्ति के रूप में दे दिया क्योंकि वृद्ध हो गया था, वृद्ध पिता। अभी ये जो श्लोक है उसको कृष्ण भक्ति या कृष्ण कथा से क्या लेना देना? ऐसा लग सकता है कि भागवतम भी वायसम तीर्थम उशंती, कौओं का तीर्थ स्थान है, ऐसा लग सकता है। लेकिन ये श्लोक साबित करता है कि अनुपदम वो श्लोक भी कृष्ण भक्ति को स्थापना करने वाला है, वो श्लोक भी कृष्ण कथा ही है। कैसे? वो श्लोक को प्रसंग के हिसाब से लेना चाहिए। तो ये जो प्रसंग अभी चल रहा है, क्या प्रसंग? देखने के लिए ऐसा लगता है कि एक ब्राह्मण दंपति अभी कुछ यौन क्रिया में लगे हुए थे और एक राजा आया जिसको शाप मिला था, नरभक्ष नर मांस खाने का शाप मिला था, राक्षस बनने का शाप मिला था। वो आके क्या किया, वो जब यौन संबंध में थे उस समय उनकी पति को उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने मैं खा जाऊंगा, और पत्नी ने निवेदन किया मत मारो मेरे पति को। तो ये सब सुन के ऐसा लगता है कि कोई फिल्म का कुछ है, कहानी है। लेकिन कथा प्रसंग, प्रसंग क्या है? प्रसंग केवल ये छोटी सी कहानी या ये श्लोक नहीं है, प्रसंग है भगवान रामचंद्र का प्राकट्य। प्रसंग क्या है? भगवान रामचंद्र का प्राकट्य और उनकी लीलाएं। तो उसके संबंध में इस श्लोक को देखना चाहिए, इन प्रसंगों को देखना चाहिए। इसलिए ये भागवतम का 12वां स्कंद का 12वां अध्याय का 66 श्लोक जो है, 66वां श्लोक जो है, इसके अंदर अनुपदम कथा प्रसंगाः ये शब्द के द्वारा हमको ये ध्यान में रखना चाहिए। भले ही कभी कभी भागवत में एक श्लोक आता है, एक स्त्री गेंद के साथ खेल रही है, हाँ, और अपने अंगों को प्रदर्शित कर रही है, ये कृष्ण कथा के साथ क्या संबंध है भाई इसका? तो ये संबंध है। कैसे संबंध है? अनुपदम कथा प्रसंगा, वो कृष्ण कथा के प्रसंग के अनुसार उसको देखना चाहिए। अगर कोई कहे अन्य पुराणों में भी इसी प्रकार देखना चाहिए, नहीं, अन्य पुराणों में इस प्रकार नहीं है। अन्य पुराणों में कृष्ण कथा को अलग किया गया है, अन्य कथा को भी अलग किया गया है। तो कृष्ण कथा के प्रसंग के अनुसार नहीं अन्य कथाएं। इसलिए व्यासदेव को नारद जी कहते हैं ये जो अन्य पुराणों को जिन्होंने रचना किया है वो वायसम तीर्थम है, वो कौओं का तीर्थ स्थान है। केवल एकमात्र ही भागवतम है जो परमहंस संहिता है। इसलिए कहा गया है नयत्र हमसा निरमंच शिक्षया, जहां परमहंस लोग जो है वो पुराणों को पढ़ने नहीं जाते, वो इतिहासों को पढ़ना नहीं चाहते, जो भले ही उसके अंदर कृष्ण कथा है, क्योंकि कृष्ण कथा को या अन्य प्रसंगों को कृष्ण कथा के प्रसंग के अनुसार बताया नहीं गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत को जानने के बाद ही हम ये भागवत के अन्य प्रसंगों को समझ सकते हैं। नहीं तो कभी कभी ऐसा लग सकता है क्या मजेदार स्टोरी है, या दूसरा हो सकता है अरे क्या ये सब स्टोरीज डाल के भागवतों को खराब कर दिया है, ऐसा लग सकता है। ये दोनों के बीच में समन्वय जो है हमको जानना चाहिए कि भागवतम में ये जो स्टोरीज जो है, ये जो घटनाएं हैं, ये कृष्ण कथा के प्रसंग के हिसाब से देखना चाहिए। तो इसलिए वो शुद्ध भक्ति ही है, वो भी कृष्ण कथा है। और साथ साथ में ये भी नहीं सोचना चाहिए कि ये तो अच्छा अच्छा स्टोरीज है इसके अंदर, कृष्ण कथा से संबंधित नहीं है तो ये भी कुछ है, नहीं, ये भी कृष्ण कथा के संबंध में है, इसके अंदर कोई भौतिक चीजें नहीं है। तभी प्रसंग चल रहा है कि विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि के द्वारा एक शाप मिला था राजा को, वो राजा अभी एक राक्षस का रूप धारण किया और एक ब्राह्मण दंपति थे, यौन संबंध में रत थे, तब उस राक्षस ने आके उनको पति को पकड़ लिया, वो उनको बहुत भूख लग रहा था, खाने का प्रयास कर रहा था, तब उनकी पत्नी जो है ब्राह्मण की पत्नी निवेदन कर रही है। क्या निवेदन कर रही है? सबसे पहला कल वाले श्लोक में उन्होंने निवेदन किया कि आप उनको मत मारिए, क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर जो है वो
बहुत अमूल्य है। अगर मेरी पति पति ब्राह्मण को आप मारोगे तो क्या होगा, तो मेरी पति जो है जो आध्यात्मिक प्रगति में रत है वो पूर्ण तरीके से अपने जीवन का लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप उनको छोड़ दीजिए कि मेरा पति जो है वो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण होने के नाते उनका जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करना, जीवन का उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना। अगर आप उसको मारोगे तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको छोड़ दीजिए। कभी कभी ऐसे सत्वगुणी बातें जो हैं वो लोगों को समझ में नहीं आता है, खास करके जिसके अंदर राक्षस या असुरी प्रवृत्ति है उनको समझ में नहीं आता है। जैसे वसुदेव ने कंस के साथ भी ऐसी ऐसी बातें कहा था, मीठी मीठी बातें कहा था, लेकिन ये सब बातें समझने के लिए सत्वगुण की आवश्यकता है। तो राजा तो वो राक्षस नहीं समझा, इसलिए दूसरे श्लोक में यानी आज वाले श्लोक में उनकी पत्नी और प्रकार निवेदन करती है। वो कहती है एषा ही ब्राह्मणो विद्वांस, एषा ही ब्राह्मणो, हे राजा आप जानते हो आप राजा हो और ये कौन है, ब्राह्मण है। और ब्राह्मण होने के नाते उनको मारने का अधिकार आपके पास नहीं है, आप क्षत्रिय हो, ब्राह्मणों को आपको संरक्षण प्रदान करना चाहिए। तो कोई व्यक्ति बोल सकता है, ये प्रसंग उठा सकता है या कोई संशय उठा सकता है, ये तो खाली जन्मतः ब्राह्मण है। उनकी पत्नी कहती है नहीं, मेरे पति जो है वो केवल जन्मतः ब्राह्मण नहीं है, एषा ही ब्राह्मणो, एषा उनको दिखाती है ये जो मेरी पति है वो केवल ब्राह्मण ही नहीं है, वो कौन है, एषा ही ब्राह्मणो, ये ब्राह्मण के साथ साथ में वो विद्वान भी है। बहुत सारे लोग हैं जो ब्राह्मण परिवार में तो जन्म लिए हुए रहते हैं लेकिन वो विद्वान नहीं होते, शास्त्र को नहीं जानते। तो ये बात को ध्यान में रखना चाहिए, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद उनको शास्त्र अध्ययन करना उनका परम कर्तव्य है, शास्त्र को जानना चाहिए तभी तो ब्राह्मण है। वैसे ही अगर कोई जन्म धारण करता है, कोई एक परिवार में जन्म लेने मात्र से ब्राह्मण नहीं बनता है। जैसे अगर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर का पुत्र बन गया, कोई पुत्र हुआ, डॉक्टर का पुत्र होने से वो डॉक्टर नहीं बनता है, तो उनको डॉक्टरी जब तक पढ़ाई नहीं करेगा तब तक वो डॉक्टर नहीं माना जाता है। उसी प्रकार ब्राह्मण का पुत्र तभी माना जाता है जब वो पुत्र भी ब्राह्मण के जैसा वो शास्त्र को अध्ययन करता है। इसलिए कहा गया है विद्वान, विद्वान का अर्थ क्या है, विद्वान का अर्थ ये नहीं केवल शास्त्र को जानना, शास्त्र के ऊपर आधारित होते हुए धर्म और अधर्म क्या है वो जानना, धर्मा धर्माधर्मो विवेक, यानी उसका बुद्धि है, क्या बुद्धि है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, ये दोनों के बीच में विश्लेषण करने की बुद्धि जिसके पास है उसको ब्राह्मण या विद्वान ब्राह्मण कहा जाता है। विद्वत्ता इतना ही नहीं खाली शास्त्रों के श्लोकों को रटना, नहीं, शास्त्रों के श्लोकों को जानना भी होना, जानकारी भी होना चाहिए और ये भी मालूम होना चाहिए कि वो श्लोकों के ऊपर आधारित होते हुए स्थापना करना चाहिए क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या सही है क्या गलत है, उस प्रकार का विवेक जिसके पास है उसी को विद्वान ब्राह्मण कहा जाता है। नहीं तो बहुत सारे ब्राह्मण हैं अनेकों अनेकों मंत्रों को तो उच्चारण कर देते हैं, शास्त्रज्ञ हो सकते हैं लेकिन उनके पास वो विवेक नहीं है कौन सा प्रसंग में कौन सा श्लोक को किस प्रकार अनुवाद करना चाहिए, कौन सा कहां लागू होता है। इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो किसके ऊपर आधारित होकर करना चाहिए, शास्त्र के ऊपर आधारित होकर करना चाहिए। इसलिए तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित, जिसके पास इस प्रकार की बुद्धि है उसी को विद्वान ब्राह्मण कहा जाता है। तब कोई कह सकता है नहीं 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 ये तो ब्राह्मण है विद्वान है सब जानता है लेकिन क्या है वो खुद तो कुछ पालन नहीं करता है। तो उनकी पति पत्नी कहती है उस राक्षस को या राजा को कि मेरी पति केवल विद्वान ब्राह्मण ही नहीं है, कौन है, तपहा, वो बहुत तपस्वी हैं, वो तपस्या करते हैं। तपस्या का अर्थ क्या है, तपस्या का अर्थ है ये नहीं कि एक दिन नहीं खाना वही तपस्या है, या हमने अनेकों दिनों तक एक पैर पे पर खड़ा रहा। तपस्या का अर्थ क्या है, हमारे अंदर जो वेग है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपास्त वेगम एतान वेगान्यो विषहेत दीरह। श्रीपाद राघवाचार्य कहते हैं कि तपस्या का अर्थ क्या है, काम क्रोध इत्यादि भी सहनम, काम क्रोध लोभ वो मद मात्सर्य मानंदर जो वेग है उसको सहन करना ये तपस्या है। वैसे देखा जाए क्षत्रिय लोग बहुत तपस्या करते हैं, अगर उसको चोट भी लग जाए तो भी वो सहन कर लेते हैं, अगर उनको 10 दिन भी भूखा रखेंगे वो युद्ध करने देंगे, बहुत तपस्या है। और देखा जाए कि उनकी तपस्या तो हम कोई कर ही नहीं सकता, कभी कभी हम देखते हैं कोई व्यक्ति ने 30 दिन तक कुछ खाया नहीं, वो भी तपस्या है। लेकिन 30 दिन में उन्होंने क्या किया, किसके तपस्या किया, तो उनको कोई पॉलिटिकल एंड चाहिए था, उनको एक कोई कॉर्पोरेटर बनने का सीट चाहिए था, या उनको कोई अपनी इच्छा को पूर्ण करना था, भले ही वो सात्विक इच्छा भी क्यों ना हो, लेकिन उसको तपस्या नहीं कहा गया है। तपस्या का वास्तविक अर्थ यह है हमारे अंदर जो वेग है उन वेगों को नियंत्रण करना, क्रोध को नियंत्रण करना, यह तपस्या है। मान लो कोई व्यक्ति निर्जला एकादशी किया, पूरा दिन कुछ खाया नहीं, लेकिन दिन चिड़चिड़ापन है, तो कौन सी तपस्या है, कोई आया तो शांति से बात कर रहा था, नहीं बस मुझे बात नहीं करना है, या कुछ बराबर व्यवहार नहीं करता है, क्रोध है, काम है, लोभ है, अहंकार है, अहंकार को या गर्व का कारण होने पर भी गर्वित ना होना ये तपस्या है, क्रोध का कारण होने पर भी क्रोधित नहीं होना ये तपस्या है। कोई व्यक्ति बोल सकता है रोजी ऐसा ऐसा व्यवहार करेगा जो गुस्सा नहीं होगा क्या, क्रोध नहीं आएगा क्या, इसका अर्थ है कि भले ही भले अनेकों कारण है क्रोधित होने की, अनेकों कारण है गर्वित होने की, लेकिन उतना अनेकों कारण होने पर भी क्रोधित ना होना या गर्वित ना होना, कामुक ना होना, ईर्ष्या ना करना, ये वास्तविक तपस्या है। इसलिए ये तपः शब्द का ही अर्थ है। कोई व्यक्ति कर सकता है ये तो बहुत अच्छा है, ये ब्राह्मण है, विद्वान है, और साथ साथ में बड़ा तपस्वी भी है, लेकिन शील इधर कोई प्रसंग में कह सकते हैं ये देखिए ब्राह्मण इतना तपस्या करने के बाद अभी क्या कर रहा था, अभी आपके साथ तो यौन संबंध में था ये ब्राह्मण। लेकिन उनकी पत्नी कहती है नहीं, मेरे पति जो है वो शील, शील गुणान्वित, अनेकों अनेकों सद्गुणों से, शीलता से, कैरेक्टर से वो परिपूर्ण है। तो उनकी पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी उस असुर से कहती है ये जो ब्राह्मण है मेरी पति है, मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए अपना कर्तव्य कर रहे हैं, वो मेरे पति होने के नाते मुझे संतान प्रदान करना उनका कर्तव्य है, कर्तव्य मात्र से वो मेरे साथ इस प्रकार का संबंध में है, अभी तक मुझे उन्होंने बीज प्रदान नहीं किया है, तो आप अगर उसको मार दोगे तो क्या होगा, हमारा कोई संतान नहीं होगा। तो अगर आप कोई एक बात कह सकते हैं, भले ही ब्राह्मण है, उनके पास बहुत सारा तपस्या है, सब कुछ है, लेकिन अभी तो योग्य नहीं है क्योंकि वो इस प्रकार का यौन संबंध में है आपके साथ में, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी कहती है नहीं, ये मेरे साथ इस प्रकार का संबंध है क्योंकि कर्तव्य भाव है ना। श्री रघुराघवाचार्य कहते हैं कर्तव्य भाव है ना, उनका कोई काम की इच्छा नहीं है, मेरे पति होने के नाते पत्नी के एक संतान प्रदान करना पति का कर्तव्य होता है, तो कर्तव्य भाव है ना उन्होंने अपनी इस प्रकार कार्य किए, मेरे पति जो है शील गुणान्वित, शील गुणान्वित का अर्थ क्या है, अनेकों अनेकों सुशील बहुत सुंदर सद्गुणों से संपन्न है मेरे पति करके वो संबोधित कर रही है। आगे कहती है इतना ही नहीं, मेरे पति का जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, आरिराराधिषु का बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। ऐसा नहीं कि केवल मेरे पति आराधना करते हैं, वो हमेशा तत्पर रहते हैं भगवान की आराधना करने के लिए। इसलिए ये क्या किया है, क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है, आरि आराधिशु, इनका एकमात्र उद्देश्य हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मेरे पति कब वो कृष्ण का सेवा करेंगे, कृष्ण का आराधना करेंगे। इसलिए आप उनको छोड़ो, वो महान भक्त है कृष्ण के, भगवान के भक्त है, इसलिए आप उनको छोड़ दीजिए। वो भगवान के भक्त होने के नाते हमेशा उनका इच्छा है, अभी वो भगवान के आराधना करने ही वाले हैं कुछ ही समय में। ये बात अपनी उनकी पत्नी जो है ब्राह्मण की पत्नी उस राजा को कहती है, आर 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 आराधेशु। अभी वो पत्नी कहती है कुछ शब्दों में कि किसकी आराधना कर रहे हैं, ब्रह्म महापुरुष संहितम सर्वभूतात्म भावेन भूतेषु अंतरहितम गुणैहि। अभी उनकी पत्नी राजा को कुछ ऐसी शब्द कहती है ताकि उनको मालूम पड़े कि केवल मेरे पति ही ब्राह्मण नहीं है, मैं भी ब्राह्मण की पत्नी हूं, और ब्राह्मण की पत्नी को दुख देना ये उचित नहीं है। जो ब्राह्मण की पत्नी को दुख देता है निश्चित रूप में उसका नाश है। भले ही ठीक है, आप नरभक्षी का शाप मिला है, आप उनको खा जाओगे, ठीक है, लेकिन मैं भी उनकी पत्नी होने के नाते अभी सुनो, मेरे मुख से तत्व की बातें सुनो। अभी स्वयं वो तत्व की बातों को कहती है, क्या कहती है, आरिरादादिशु ब्रह्मा, हे राजा तुम सुनो, मेरी पति किसका आराधना कर रहे हैं, तत्पर है, किसकी आराधना करने के लिए तत्पर है, ब्रह्म की आराधना करते हैं। और ब्रह्म का विश्लेषण क्या है, ब्रह्म जो है वो महापुरुष है, वो महापुरुष है, संगीतम, उनको महापुरुष जाना जाता है, भगवान को महापुरुष कहा जाता है। तो इसलिए आप जानो वही महापुरुष सर्वभूतात्म भावेना सारे जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में बसे हुए हैं। मेरे पति उस ब्रह्म का उपासना करते हैं जिनको महापुरुष के रूप में जाना जाते हैं, और वही महापुरुष जो है वो कौन है, वो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। इसलिए ये शब्दों के द्वारा ब्राह्मण की पत्नी उस राजा को कहती है, मैं एक तत्ववित्त हूं, मैं भी तत्व को जानती हूं, ऐसा नहीं कि मैं एक स्त्री हूं, स्त्री होने के बावजूद भी मेरे पति एक ब्राह्मण है, विद्वान ब्राह्मण है होने के नाते मेरे अंदर भी वो विद्वत्ता है, मैं भी उस तत्व को जानती हूं। जैसे भागवत में कहा गया है शुरुआत में, वदंती तत्तत्व तत्व यज्ञान द्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्मन परमात्मा भगवान को जानती हूं, ब्रह्मन तो जानता है, परमात्मा को जानता है, भगवान को जानता है, उसको तत्ववित्त कहा गया है, तत्वदर्शिणः कहा गया है, तो तत्व को जानता है, वो तीनों स्तर को जानना चाहिए। इसलिए क्या कह रही है, ब्रह्म वही महापुरुष भगवान है, और सर्वभूतात्म भावेना सबके हृदय में वो छुपे हुए हैं, भूतेषु अंतरहितम गुणे ही। तो अगर कोई व्यक्ति कह सकता है कि भगवान है तो कहां है, क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो उनकी ब्राह्मण की पत्नी कहती है, भूतेषु अंतरहितम, सबके हृदय में छुपे हुए हैं और दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं, जवाब देती हैं, गुणै ही, गुणों का आवरण के वजह से लोग वो सबके हृदय में छुपे हुए जो भगवान हैं उनको नहीं देख सकते। सत्वादि गुणै ही, ये गुणों के आवरण के वजह से उस भगवान को नहीं देख सकते। इसलिए हे राजा आप उनको छोड़ दीजिएगा, मेरा ब्राह्मण ये ब्राह्मण है और मैं उनकी पत्नी हूं, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं उनको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उनको मारना इट इज ए ग्रेट सिंफुल एक्ट, एंड द ब्राह्मण इज वाइज रिस्पेक्टेड दैट ही नॉट बी किल्ड। अनेकों तरीके से ब्राह्मण की जो पत्नी है वो राजा से वो प्रार्थना कर रही है, मेरी पति को आप मत मारिए, क्योंकि वो केवल ब्राह्मण ही नहीं है, वो विद्वान है, वो केवल ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण ही नहीं है बल्कि वो तपस्वी है, वो केवल तपस्वी नहीं बल्कि शील गुण ही, सारे शुद्ध शील गुणों से संपन्न है, इतना ही नहीं, वो कौन है? भगवान की आराधना करने के लिए बहुत तत्पर है। ये पांच लक्षणों को बताने के बाद उनकी पत्नी ये भी कहती है, मैं भी ब्राह्मण की पत्नी होने के नाते मैं भी तत्व को जानती हूं, भगवान ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, और दिखाई नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि सबके हृदय में निवास करने पर भी दिखाई नहीं पड़ते। क्यों? गुण ही, क्योंकि गुणों की वजह से वो दिखाई नहीं पड़ते, गुणों का आवरण की वजह से दिखाई नहीं पड़ते, बिकॉज ऑफ द बीइंग कवर्ड बाय द मोड्स ऑफ ऑफ नेचर बाय द क्वालिटीज। तो ये इन इस श्लोक का तात्पर्य है। आगे भी कुछ श्लोकों में वो निवेदन करती है कि मेरे पति को आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन ये राक्षस होने के नाते, वशिष्ठ का शाप होने के नाते, उनको जरा सा भी समझ में नहीं आई, निवेदन समझ में नहीं आया। उसने क्या किया, वो ब्राह्मण को खा गए, तो उसकी पत्नी ने उनको शाप देती है। अभी इस अवस्था में, यौन अवस्था में, यौन संबंध की अवस्था में आपने मुझे, मेरे पति को मार दिया, इसलिए मैं शाप देती हूँ कि आप जब भी आप अपनी पत्नी के साथ संग करने जाओगे तो आपको मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आगे क्या हुआ आता है कि ये जो राजा है उसके कोई वंशज नहीं हुए। इसलिए वशिष्ठ के द्वारा उनकी पत्नी का गर्भदान हुआ, तब उनके संतान और आगे बढ़ा। तो ये राजाओं का चरित्र है, राजाओं का, खास करके ये जो इक्ष्वाकु वंश का चरित्र है। बाद में अंशुमान आए, बाद में और राजा आए, बाद में अंततः रामचंद्र आते हैं। तो रामचंद्र के प्राकट्य की तैयारी सब चल रहा है इधर। हरे कृष्णा। ओके, प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? इनका प्रश्न ये है कि अगर कोई अन्य पुराणों को पढ़ता है, कृष्ण भक्ति को स्थापना करने के लिए, कृष्ण की महिमा को गुणगान करने के लिए पढ़ता है, क्या वो कौओं का तीर्थस्थान माना जाता है? नहीं। उसी अध्याय में 14वां श्लोक है, 5वां अध्याय का पहला स्कंध का 5वां अध्याय का 14वां श्लोक है। उधर नारद मुनि इस बात को कहते हैं, जो भी भगवान से अलग होके कुछ भी बोला जाता है वो अलग अलग प्रकार के नाम रूप को धारण करता है। तो अगर मान लीजिए कोई चीज है, कोई न्यूज़पेपर भी क्यों ना हो, अगर उसको भागवत के सिद्धांत के अनुसार उसको वर्णन किया जाए वो भी कृष्ण कथा होता है। अगर भागवत भी है, अगर कोई व्यक्ति उसको अलग तरीके से वर्णन करना चाहता है, कृष्ण भक्ति और कृष्ण कथा से अलग होकर करना चाहता है, तो वो भी कौवे का तीर्थस्थान माना जाता है। तो व्यासदेव अनेकों पुराणों की रचना किया, सब कुछ किया, मूल क्या था उनको ये बात नहीं मालूम था, भक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ है और कृष्ण कथा ही एकमात्र विषय वस्तु है वेद का। तो इन बातों को स्थापना करने के लिए अगर अन्य चीजों को पढ़ा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो वो ठीक है, बिना निपाम लोग ऐसा है। हाँ, आगे के श्लोकों में जब वो राक्षस थे, वो ब्राह्मण को खा गया, तब प्रभुपाद जी लिखते हैं उस तात्पर्य में, उस श्लोक की तात्पर्य में बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं कि जो कर्मम में लिखा है वो होगा ही। काले न सर्वत्र, वो श्लोक का तात्पर्य मैं एक बार पढ़ता हूं। Even though the brahmana's wife spoke so publicly, Saudasa was unmoved by her lamentation. Unka hruday kuch pigla nahi. So when the chaste wife of the brahmana saw that her husband, who was about to discharge semen, has been eaten, tab unhone dekha ki unhone kha liya. Thus she angrily cursed the king. To unhone unko kiya. To us shlok mein, या 33rd श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, तल्लभ्यते दुःखवद् अन्यतः सुखम्। ये दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेस्टिनी प्रभुपाद, ये जो है कर्म का जो एक उदाहरण है। इतना सब कुछ करने के बाद भी, प्रयास करने के बाद भी, रक्षा करने की उनकी पत्नी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ब्राह्मण को रक्षा नहीं कर पाए। तो as one is put into distress by destiny, destiny also puts one in happy situation. कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत प्रयास करते हैं सुखी होने के लिए, लेकिन दुखी होते हैं। अगर हम बहुत प्रयास करेंगे दुखी होने के लिए तो सुखी हो जाएंगे। तो प्रभुपाद इस बात को लिखते हैं कि कालेन, जैसे तल लभ्यते दुखवत अन्यतः सुखम, अपने दैव या कर्मों के अनुसार हमको दुख मिलता है तो कर्मों के अनुसार सुख भी मिलता है। तो ये बात समझना, डेस्टिनी इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो कर्म है, कर्म का बंधन बहुत पावरफुल है, और बट वन कैन चेंज डेस्टिनी, वन कम्स प्लेटफॉर्म कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भक्ति करता है तो उनकी जो डेस्टिनी है हो सकता है। बहुत साल पहले एक भक्त आया, प्रभु जी मैं एक ज्योतिष के पास गया था, उसने बोला कि मेरा शादी होना चाहिए, लेकिन अभी ब्रह्मचारी हूं मुझे डर लग रहा है अभी बाद में शादी हो जाएगा। तो मैंने कहा कृष्ण भक्ति के द्वारा तुम्हारा डेस्टिनी चेंज हो जाता है इससे ज्यादा भक्तों को ये डेस्टिनी के ऊपर ध्यान दिया। लेकिन ये कुछ भी होता है, अच्छा बुरा सुनना चाहिए, मेरे कर्मों में है, ठीक है। रंत्राश्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय